ஓம் த்யாயே நித்யம் மகேசம் ரஜத கிரிநிபம் சாரு சந்திராவதன்சம் ரத்னாகல்போஜ்வலாங்கம் பரசுமிருகவரா வேதிஹஸ்தம் பிரசன்னம் பத்மாசீனம் சமந்தாத் ஸ்துதமமரகணிர் வ்யாக்ரக்ருத்திம் வசானம் விஸ்வாத்யம் விஸ்வவந்தியம் நிகில பயஹரம் பஞ்சவக்த்ரம் த்ரிநேத்ரம் நாராயணம் பத்மபவம் வசிஷ்டம் சக்திம் ச தத் புத்ர பராசரம் ச வ்யாஸம் சுகம் கௌடபதம் மஹந்தம் கோவிந்த யோகீந்திரமதாஸ்ய சிஷ்யம் ஸ்ரீசங்கராச்சார்யமதாஸ்ய பத்ம பாதம் ச ஹஸ்தமலகம் ச சிஷ்யம் தந்தோடகம் வார்த்திகாரமண்யான் அஸ்மத் குரும் சந்ததமானதோஸ்மி விசுத்தஞானதேஹாய த்ரிவேதி திவ்யசக்ஷுஷே ஸ்ரேயஃ ப்ராப்தி நிமித்தாய நமஃ ஸோமார்த்தாரிணே ஓம் ஶாந்தி ஶாந்தி ஶாந்தி. ஓம் ஓம் ஓம். ஆதிகுரு பகவான் சங்கராச்சாரிய துவாரா விரச்சித் சிவானந்த லஹரி இஸ் ஸ்தோத்ர கே ஆதார் பர் விசார் சல் ரஹா ஹை. விசார் கே லியே அப்யாஸ் கே லியே 18வாம் ஸ்லோக. த்வமேகோ லோகானாம் பரம ஃபலதோ திவ்ய பதவிம் வஹந்தஸ்தன்மூலாம் புனரபி பஜந்தே ஹரிமுகா கியத்வா தாட்சிண்யம் தவ சிவ மதாசாச்ச கியதி கதா வா மத்ராக்ஷாம் வஹசி கருணா பூரித த்ரிஷா துராசா பூயிஷ்டே துரதிபிருஹத்வார கடகே துரந்தே சம்சாரே துரித நிலையே துக்க ஜனகே மதாயாசம் கிம் ந வ்யபநயசி கஸ்யோபக்ருதயே வதேயம் ப்ரீதிஶ்சேத் தவ சிவ க்ருதார்த்தஹ கலு வயம் சதா மோஹாட்டவ்யம் சரதி யுவதீநாம் குசகிரௌ நடத்யாசாசாகா ஸ்வடிதி ஜடிதி ஸ்வைரமபிதஹ கபாலின் பிக்ஷோ மே ஹ்ருதய கபி மத்யந்த சபலம் திருடம் பக்த்யா பத்தா சிவபவதீனம் குரு விபோ திருதிஸ்தம்பாதாராம் திருடகுணநிபத்தாம் சகமனாம் விசித்ராம் பத்மாட்யாம் பிரதிதிவச சன்மார்க கடிதாம் ஸ்மராரே மச்சேதஹ ஸ்புரபட்டகுட்டிம் ப்ராப்ய விசதம் ஜயஸ்வாமின் சக்த்யா சஹசிவகணைஹி சேவித விபோ கதா வா கைலாசே கனகமணி சௌதே சஹகணேர் வசன் சம்போரக்ரேஸ் புட்டகடித மூர்தாஞ்சலி புட விபோ சாம்ப ஸ்வாமின் பரமசிவ பாஹீதி நிகதன் विधातृणां कल्पान् क्षणमिव निवेश्यामि सुखतः त्वमेको लोकानां परमफलदो दिव्यपदवीं वहन्तस्त्वन्मूलां पुनरपि भजन्ते हरिमुखाः कियद्वा दाक्षिण्यं तव शिव मदासा च कियती कदा वामद्रक्ष्यां वहसि करुणापूरितदृशा त्वमेको लोकानां। महान पुरुष की ये विशेषता होती है कि वह अपनी साधना से चाहे जितनी भी ऊंचे से ऊंची भूमिका में पहुंचा हो, लेकिन जो अपने से नीचे भूमिका में जो हैं उनके उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए उस भूमिका में आकर बात करते हैं, उस भूमिका में आकर चर्चा करते हैं। ये श्लोक जब पढ़ते हैं तो हम ये सोच भी नहीं सकते हैं कि शंकराचार्य जी इस प्रकार के भाव व्यक्त कर सकते हैं। एक तरफ हमारे सामने आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी का वह दिव्य छवि, वह दिव्य भूमिका, वह सर्वोच्च वेदांत दर्शन के ज्ञान की सप्तम भूमिका, छठी भूमिका की चर्चा, और उनकी ये चर्चा केवल शाब्दिक नहीं था। शंकराचार्य जी के उस भूमिकाओं की चर्चा, जीवन मुक्त की भूमिकाओं की चर्चा, वो केवल शाब्दिक नहीं था। मैं यदि उन भूमिकाओं की चर्चा करूं तो वो एक शाब्दिक है, अनुभव गम्य नहीं है। आप लोग इस भ्रांति में नहीं रह जाना कि स्वामी आत्मानंद जी बहुत ऊंचे भूमिका में हैं, क्योंकि बहुत ऊंची भूमिका की चर्चा करते हैं। हमारी उस भूमिका की चर्चा शाब्दिक है, और आप भी कई बार उस भूमिका की चर्चा कर देते हो, वो आपकी भी वो भूमिका की चर्चा केवल शाब्दिक है। इसीलिए किसी ने कहा कि बक वेदांती बहुत होते हैं, हठ सिद्धांती भी बहुत होते हैं, क्योंकि बक वेदांती जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, हठ सिद्धांती होते हैं। उनका सिद्धांत क्या है, वेदांत सिद्धांत कैसा है, बोले हठ पूर्वक है, हम तो यही मानेंगे। ये हठ वेदांती, हठ सिद्धांती, बक वेदांती किसी ने कहा है, क्योंकि शाब्दिक ज्ञान की भूमिकाओं की चर्चा करने वाला बक वेदांती, और उससे नीचे या उससे भिन्न की चर्चा सुनना भी न चाहे और करना भी न चाहे वह हठ सिद्धांती होना चाहिए। साधक में ये निष्ठा होनी चाहिए, साधकों के लिए ये दोष नहीं है, होनी चाहिए। निष्ठा हुए बिना उसकी साधना फलीभूत नहीं होगी, क्योंकि नहीं तो और लोग विचलित कर देंगे उसको। ऐसे ऐसे सिद्धांत वाले आपके सामने आएंगे, आपकी निष्ठा को विचलित कर देंगे। आप साधक के भूमिका में हो, अजी कच्ची घानी है, हाँ, विचलित होने की संभावना बहुत है, और बहुत विचलित हो जाते हैं। हठ सिद्धांती होना चाहिए, उसी को निष्ठा कहा। लेकिन खाली सिद्धांत का हठ मात्र लेना नहीं, वो भी एक प्रकार का फिर दोष भी है उसमें। अच्छी बात है तो दूसरे के सिद्धांतों को भी स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, सिद्धांत के अनुकूल हो तो स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन दुराग्रह नहीं रखना, पूर्वाग्रह नहीं रखना। उच्च कोटि की भूमिका के महात्मा कभी भी हठ सिद्धांती बक वेदांती नहीं होते, वो जो बोलते हैं वह मेमोरी की बात नहीं कहते, हृदय की बात करते हैं। हृदय की बात अलग है, मेमोरी की बात अलग है। आज ही चर्चा हो रही थी, महाराज वेदांत का जो ज्ञान है प्रवचन हॉल में आपके सुनते हैं, जब तक सुनते हैं सब बात समझ में आ जाती है, समझ में आती है। आप लोगों को समझ में आती है कि नहीं? जब हम सुनाते हैं तो समझ में आ जाता है, जब बाहर निकलते हैं व्यवहार में तो कहां जाता है, कहां जाता, समझ में ही नहीं आता है, फिर वह गायब हो जाता है। देखो दो प्रकार के ज्ञान हैं, एक शब्द ज्ञान, दूसरा अर्थ ज्ञान। आप प्रवचन हॉल में जब तक बैठते हो शब्द ज्ञान सुनते हो, और शब्द ज्ञान के साथ साथ अर्थ ज्ञान भी सुनते हो, दोनों सुनते हो कि नहीं? शब्द ज्ञान तो सुनते ही हो, शब्द प्रत्यक्ष तो होता ही है आपको, साथ में महात्मा जब बता देते हैं तो अर्थ भी सुन लेते हो उसका, तो अर्थ ज्ञान भी हो जाता है। शब्द प्रत्यक्ष होता है, अर्थ परोक्ष हो जाता है, लेकिन ज्ञान होता है दोनों। ध्यान दो, हम जो बोल रहे हैं आप जो सुन रहे हैं वो शब्द प्रत्यक्ष हो गया तो शब्द ज्ञान हो गया, और उसका जो हमने अर्थ लगाया वो अर्थ आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं है तो वह परोक्ष ज्ञान है। अब हॉल के बाहर निकल जाते हो तो कौन सा ज्ञान नहीं रहता तुम्हारे पास? ये दो ज्ञान में से कौन सा ज्ञान नहीं रहता बोलो? शब्द ज्ञान नहीं रहता तुम लोगों के पास, समस्या ये है, शब्द ज्ञान ही भूल जाते हो, कौन कौन से शब्द प्रयोग किया वो शब्द ज्ञान ही गायब हो जाता है। सुनते समय शब्द सुन रहे हो, कान से शब्द प्रत्यक्ष हो रहा है, लेकिन जब सुनना बंद किया शब्द ज्ञान गायब। हमारे पास शब्द ज्ञान है इसलिए हम हॉल के बाहर भी उन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, आपके पास वो शब्द ज्ञान नहीं है इसलिए शब्द ज्ञान केवल सुन सकते हैं, शब्द को सुन सकते हैं, शब्द को बोल नहीं सकते। हमारे पास और समय में भी वो शब्द ज्ञान रहता है इसलिए हम बोल भी सकते हैं, जहां भी बोल सकते हैं, तुम सड़क में बुलवाओ तो सड़क में बोल देंगे, ऐसा नहीं है कि खाली हॉल में बोलते हैं। लेकिन अर्थ ज्ञान अर्थ परोक्ष ज्ञान आपके पास भी है, अर्थ परोक्ष ज्ञान हमारे पास भी है। अर्थ अपरोक्ष तो हमको भी नहीं हुआ है भाई, ईमानदारी से कह देता हूं मैं, वे होंगे और कोई महात्मा आते होंगे जिसको अर्थ अपरोक्ष हुआ हो, मैं उनकी निंदा नहीं करूंगा, मैं अपनी निंदा करूंगा, क्योंकि अब निंदा करने तो मैं सक्षम हूं, स्वतंत्र हूं ना, है? अन्यथा नहीं लेना। आज एक बहन आई कि आपका परिचय महाराज है, तो हमने कहा मेरा परिचय क्या करना है? बोले आपके परिचय कुछ हम जानना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, आप बताइए आपका परिचय, इंट्रोडक्शन है ना, आपका बायोडाटा, हमने कहा देखो भाई, हमारे परिचय के बारे में, हमारी कमी कमजोरी, हम अपनी निंदा खुद कर सकते हैं, इसीलिए तुम्हें लिखना हो तो मेरी अपनी निंदा मैं तुमको लिखा दूंगा, लिख लो जितना लिखना हो। क्या क्या समझ में आया आप लोगों को? ये शब्द मैंने बोला है, अपनी निंदा तो मैं कर सकता हूं और अपनी निंदा, अपनी कमी कमजोरी मैं लिखा सकता हूं, तो तुम्हें मेरी कमी कमजोरी लिखनी हो तो लिख लो। माता जी ने कहा कि आपकी कमी कमजोरी से हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमको तो आपकी प्रशस्ति लिखनी है, इसलिए आपके जो अच्छे गुण है वो बताइए। तो हमने कहा हम अपनी प्रशंसा अपने मुख से नहीं कर सकते, आप लोग कर सकते हो है? बोलो, समाज में क्या कहा गया है? सामाजिक दृष्टि से भी अपनी प्रशंसा खुद अपनी वाणी से नहीं करनी चाहिए, अपनी प्रशंसा अपने करे, दूसरे करे तो ठीक है, और अपनी प्रशंसा अपने करे तो अतिशयोक्ति भी हो सकता है, सत्यता से उसका कोई संबंध न हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हमने कहा मेरी प्रशंसा मैं खुद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी निंदा मैं खुद कर सकता हूं, लिखनी हो तो निंदा लिख लो मैं लिखा दूंगा, प्रशंसा मैं खुद नहीं कर सकता इसलिए प्रशंसा को मैं लिखा नहीं सकता हूं। क्या लिखना है बोलो? निंदा लिखनी हो? नहीं महाराज। प्रशंसा लिखनी? बोले हां, तो फिर किसी और से पूछो है। तो शब्द ज्ञान, हॉल से बाहर परोक्ष अर्थ ज्ञान तो हमारे पास भी रहता है, प्रवचन हॉल में आपको महात्माओं ने शब्द के माध्यम से जो अर्थ बोध कराया है, वो अर्थ आज तक न हमको अपरोक्ष हुआ है न आपको अपरोक्ष हुआ है। जीव ब्रह्म की एकता का अपरोक्ष हुआ है आपको, तत्त्वमसि ये वाक्य और इसका जो अर्थ महात्माओं ने प्रवचन में सुनाया है, हॉल के अंदर सुनाया है, तत्त्वमसि ये शब्द से भी आप परिचित हो गए। तत्त्वमसि ये जीव ब्रह्म की एकता को बताने वाला अर्थ, एकता, उससे भी आप वाकिफ हो गए, परिचित हो गए। लेकिन परोक्ष, और हम भी परोक्ष ही बता रहे भाई है। तो लोग कहते हैं कि नहीं महाराज, वेदांत ज्ञान हमारे पास हमेशा क्यों नहीं रहता? बड़ी समस्या है। हमने कहा भाई हमेशा रहना भी नहीं चाहिए, वेदांत ज्ञान हमेशा ध्यान में, ज्ञान में, अनुभव में, बुद्धि में आना भी नहीं चाहिए। जैसे हमेशा वेदांत ज्ञान नहीं आनी चाहिए, इसी तरह हमेशा व्यावहारिक ज्ञान भी दिमाग में नहीं आनी चाहिए। ज्ञान का उपयोगिता इतनी है कि ज्ञान तुम्हारे पास रहे, जिस समय तुमको आवश्यकता पड़े उस समय सामने आए, और जिस समय तुम्हें उसकी आवश्यकता नहीं हो तो जहां गए जाए, जहां पड़ा है पड़ा रहे, सामने आने की जरूरत नहीं है, ध्यान में आने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत पड़े उस समय आ जाए तो ज्ञान की उपयोगिता है, तुम्हें जरूरत नहीं है उस समय आना, आ जाए तो और मुसीबत में पहुंच जाओगे। तुम्हें जिस समय उसकी जरूरत नहीं उस समय वो आ जाए तो तुम मुसीबत में पहुंच जाओगे, तो उस समय तो वह लुप्त ही होना ही चाहिए। कहां छुपा है? छुपा ही रहे, ना आवे वही ठीक है। नहीं तो तुम भोजन करने बैठो, भोजन करने बैठो और उस समय वेदांत का ज्ञान तुम्हारे सामने आ जाए, है महात्माओं ने जो कहा वो ज्ञान सामने आ जाए, अरे तू अकर्ता है, अभोक्ता है, और ये ज्ञान तुरंत यदि तुम्हारे दिमाग में आ गया अभोक्ता है, तो भोजन से सजा हुआ थाली की क्या उपयोगिता रहेगी? फिर भी खाओगे है? तुम्हारा ज्ञान है अभोक्ता हूं मैं, महात्मा ने कहा तू अभोक्ता है, तुमको वो अभोक्तापना का ज्ञान थाल सामने आते ही आ गया, तो फिर भी खाओगे? अभोक्ता है ये ज्ञान उस समय ना आवे, यही हमारे हित में है, तभी बढ़िया श्रीखंड वासुदी पूरी रस खम्मण ढोकला चटनी मस्ती से मजा आ भी गयो करते हुए खाते रहो, क्योंकि अभोक्ता ये ज्ञान गायब है ना, छुपा हुआ है ना, उसके छुपे रहते हुए खाते रहो है? अब जिस समय कोई मर गया उपयोगिता देखना, ज्ञान की सार्थकता कब है, जिस समय कोई मर गया ठीक उस समय में वेदांत ज्ञान सामने आ जाए, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूता भवितावान हुए, वो तुम्हारे दिमाग में उसी समय ठीक आ जाए सार्थकता है, और उस समय यदि नहीं आता है वही ज्ञान की कमी कहलाएगी, लेकिन उस समय आ जानी चाहिए। लेकिन आती तो है, कोई दूसरे का पति मरा हो तो तुम्हारा सुना हुआ वेदांत का ज्ञान उस समय आता है कि नहीं बोलो, तुम्हारी शैली कोई शैली है, उसका पति मरा वो रो रही है तो उस समय तुम जाओ तो तुम्हारा सुना हुआ वेदांत उस समय खूब काम आता है, बहन आ तो एम छे आत्मा तो कहीं मरता नहीं है, जन्म तो नहीं पैदा नहीं होता है मरता नहीं है, न जायते म्रियते वा कदाचिन, उसको तो खूब सुनाओगे, सुनाओगे कि नहीं, उपस्थित होगा कि नहीं उस समय। इसी तरह यदि अपना पति मरते समय वो ज्ञान आ गया तब उपयोगिता है, क्या बोलो है? तब उस ज्ञान की उपयोगिता है। दूसरे का बाप मर गया बेटा रो रहा है तो उस समय यदि तुम वेदांत सुनते हो तो तुम्हारा सुना हुआ वेदांत ज्ञान उस समय उपस्थित होता है कि नहीं, उसको समझाने के लिए है? हो जा बेटा, ये तो जन्म मृत्यु तो शरीर का धर्म है, ये जो पैदा हुआ वो अवश्य मरेगा, जो मरेगा वो फिर पैदा होगा है? श्लोक भी याद होगा, सुना दोगे, तुमको गीता याद है ना, श्लोक भी सुना दोगे, महात्माओं ने सुनाया, याद हो गया है, है? देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्रण मुह्यति, सब सुना दोगे। लेकिन जब अपना बाप मरता है तब है? जब अपनी मां मरती है तब, अपना बेटा जब मरता है तब, ज्ञान की उपयोगिता यदि उस समय वो ज्ञान उपस्थित हो जाए जिस समय दूसरों को सुनाते समय आ गया था, तब उसकी सार्थकता है। और समय है? अब जी रहे हो, देह मिथ्या, देह मिथ्या, भोजन मिथ्या, संसार मिथ्या, शरीर मिथ्या, तो फिर कपड़ा क्यों पहनना करने लग जाओगे तो है? बोलो, शरीर मिथ्या, शरीर मिथ्या, देह मिथ्या, तो कपड़ा मिथ्या शरीर को पहना रहे हो कि सत्य शरीर को पहना रहे हो? बोलो, पहना तो मिथ्या ही रहे हो है? लेकिन उस समय सब मिथ्या मिथ्या करने लग जाओ तो कुछ भी नहीं बनेगा। ए व्यवहार करते समय व्यवहारिक ज्ञान सामने आ जाए, और जब तत्व चिंतन करते समय तत्व ज्ञान सामने आ जाए, बस सब खत्म हो गया, इतने ज्ञान का प्रयोजन है। हमेशा दिमाग में दोनों ज्ञान आ जाए तो फाइट हो जाएगा, किसका, व्यवहारिक ज्ञान का और पारमार्थिक ज्ञान का फाइट ऐसा हो जाएगा कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। हेलो, अब तुम रसोई बनाने जा रहे हो तो गाड़ी चलाने जानते हो, ड्राइविंग का ज्ञान तुम्हारे पास है, उसी समय में करछी चलाते समय ड्राइविंग का ज्ञान आ जाए तो क्या करोगे है? करछी को ही घुमाने लग जाओगे तुम है? कढ़ाई को ही घुमाने लग जाओगे, वो भगवान पतीले को ही घुमाने लग जाओगे? उस समय ड्राइविंग का ज्ञान कहां गया, कहां है नहीं है, क्या लेना देना है तुमको भाई? अब ड्राइविंग चलाते समय गरते समय में हाँ कुटस्थ असंग अकार विकार रहित है, इंद्रिय रहित अकर्ता, तो ब्रेक लगाओगे कि नहीं? अकर्ता ब्रेक लगाएगा है? कर्ता लगाएगा कि अकर्ता लगाएगा, क्या होगा? अब उस समय तुम अकर्ता अपने को निश्चय करोगे तो ब्रेक कौन लगाएगा? वो ज्ञान छुपे रहना ही हितकार है, इसलिए ज्ञान सभी होनी चाहिए, हमेशा सभी ज्ञान उपस्थित रहो रहे ये आग्रह छोड़ दो। तो हम आज फिर किस प्रसंग में चले गए पता है, शंकराचार्य जी जैसे उस भूमिका में पहुंचे हुए संत, जिस भूमिका की केवल चर्चा नहीं कर रहे, जिस भूमिका को वह जी रहे हैं, अपरोक्ष कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, करने वाले वह संत वो शंकराचार्य जी जब लोकहित की बात करने लगते हैं तो इस भूमिका में उतर जाते हैं कि सामान्य मान लो कि वह कुछ नहीं जानते, मान लो कि वह बहुत परेशान हो गए हैं, क्योंकि वह परेशान जो हुए हैं अज्ञानी उनके हृदय की बात का अनुभव करके वो बता रहे हैं। ये देख लो संतों की महिमा तो यही है, महानता यही है, केवल अपने हृदय की बात पर सीमित न रहकर वह दूसरे के हृदय की को भी अपना हृदय माने, दूसरे के हृदय को भी अपना हृदय माने, तब उसकी सारी समस्या से वह परिचित हो जाएगा। आप 10 मिनट भी दूसरे का हृदय को अपना हृदय मानो और अपने हृदय की सारी समवेदना को तुम दूसरे में कल्पना करो तो देख लो विभेद का कोई अवसर ही नहीं रहेगा। उसके हृदय को अपना मानो और अपने हृदय से उसके हृदय की कल्पना करो, परिभाषा करो। इसलिए तो कहा कि आत्मना प्रतिकूल आने समय परेशान न समाचरित, अयम तो परमो धर्म यद्योगे न आत्मदर्शनात्। सबसे बड़ा धर्म तो यही है कि तुम्हारे लिए जो अनुकूल है वो दूसरे के लिए भी अनुकूल हो सकता है और तुम्हारे लिए जो प्रतिकूल है वो दूसरे के लिए भी प्रतिकूल है। ये तुम्हारे हृदय में ये परिभाषा होनी चाहिए कि मेरे लिए जो अनुकूल है वो सभी को अनुकूल होगा, मेरे जो प्रतिकूल है वो सभी को प्रतिकूल होगा। भूख लगे उस समय भोजन न मिले मेरे लिए प्रतिकूल है, तो भूख लगे उस समय भोजन न मिले तो उसको भी प्रतिकूल है। ये क्या हुआ, दोनों हृदय को एक करके तुमने विचार किया। कोई थप्पड़ मारे तो मेरे लिए प्रतिकूल है, तो उस समय इसी तरह उसको यदि थप्पड़ लगेगा वो थप्पड़ उसके लिए भी प्रतिकूल है। प्रशंसा करे मेरे लिए अनुकूल है, स्तुति करे मेरे लिए अनुकूल है, प्रसन्नता का विषय है, तब प्रशंसा स्तुति दूसरे के लिए भी प्रसन्नता का विषय है। वो मेरे अनुकूल हो गया, जब वो मेरे अनुकूल होता है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, होती है कि नहीं? मेरी बहू मेरे अनुकूल हो जाए मुझे प्रसन्नता होगी कि नहीं? या? मेरा बेटा मेरे अनुकूल हो जाए तो मुझे प्रसन्नता होगी कि नहीं? मेरा पति मेरे अनुकूल हो जाए मुझे प्रसन्नता होगी कि नहीं? मेरी पत्नी मेरे अनुकूल हो जाए मुझे प्रसन्नता होगी कि नहीं? तो मेरे पति मेरे पत्नी मेरे अनुकूल होने पर मेरी जो प्रसन्नता होगी, तब उसका पति उसके अनुकूल हो जाए, उसकी पत्नी उसके अनुकूल हो जाए, मैं उसका पति हूं, वो मेरा पति है, मैं उसका पत्नी हूं, है? वो मेरे अनुकूल हो जाए मुझे प्रसन्नता है, तो मैं उसके अनुकूल हो जाऊं तो वो जरूर प्रसन्न होगा। ये क्या हो गया, हृदय की एकता, भावना की एकता, और ये भावना की एकता ही एक दूसरे के पूरक बनकर एक दूसरे के उपकारक बन जाएंगे, वो अपकारक कभी भी नहीं बन सकते। तो शंकराचार्य जी एक साधारण प्राकृत पुरुष की भूमिका में आकर अपने भाव, मान लो एक प्राकृत पुरुष अपना भाव परमात्मा के सामने रख रहा है, वो प्राकृत पुरुष को भगवान से मुलाकात तो हो नहीं पा रही होगी, और शंकराचार्य जी कोई साधारण प्राकृत पुरुष तो है ही नहीं, अप्राकृत पुरुष है, भगवान से मुलाकात हो गई। तो मान लो कि शंकराचार्य जी ने एक प्राकृत पुरुष की बात भगवान के सामने रख दी। जो प्राकृत पुरुष ये सोचता था कि भगवान मिले तो मैं उनसे ये बात कहूंगा, ध्यान देना, ये शब्दों पर ध्यान देना। प्राकृत पुरुष क्या कहेगा, यदि भगवान मिले तो उनसे मैं सारी बात कहूंगा, ये सोचकर बैठा है कौन, प्राकृत पुरुष। और क्योंकि उसकी भावना से परिचित हो गए कौन, कि संस्कृत पुरुष, संत पुरुष, उसके भावना से परिचित हो गए। तो उसको तो भगवान नहीं मिल रहे हैं, मिल गए किसको, संत पुरुष को। तो संत पुरुष ने क्या किया, उस प्राकृत पुरुष की हृदय की भावना अपने माध्यम से भगवान के सामने रख दिया। ये फॉर्मूला संतों के बारे में, शंकराचार्य जी के बारे में दिमाग में बैठाओगे तो ये श्लोक समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं तो हजार टिप्पणी करोगे तुम। ध्यान दो, ध्यान दो, देखो क्या कह रहे हैं। प्राकृत है लेकिन वो मुमुक्षु है, साधक है। प्राकृति भी पामर नहीं है, साधक है। प्राकृत भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो पामर है विषयासक्त, दूसरा साधक है मुमुक्षु है, दोनों प्राकृत है। त्वमेको लोकानां, शंकराचार्य कहते हैं, परम फल दो दिव्य पदवीं, तुम एक लोकाना, सभी लोक में, चाहे भूलोक हो, चाहे भूवर लोक हो, चाहे स्वर लोक हो, 14 लोक है, सभी लोक, हर लोक में, लोक लोकांतर में, तुम एक परम फलदः, सभी लोक में, हर लोक में उन लोकवासी जीवों को परम फल, अविलसित फल प्रदान करने वाले आप ही एक है। आपके अलावा लोक लोकांतर में रहने वाले लोकवासी, भारत में रहने वाले भारतवासी, तो लोक में रहने वाले लोकवासी, उन सारे लोकवासियों के अपने अपने अभिलाषा, अलग अलग अभिलाषा होंगे, सभी की एक ही अभिलाषा नहीं है, सभी का एक ही मनोरथ नहीं है, अलग अलग लोकों के अलग अलग मनोरथ है। स्वर्ग में रहने वाले देवता तुम्हारे यहां के हापुस आम के रस के लिए लालायित नहीं होंगे, रसपुरी के लिए तड़फेंगे नहीं, वो तो अमृत पान करने वाले क्या रसपुरी में तड़फेंगे, वो स्वर्ग में रहने वाले देवता, लोकवासी स्वर्गवासी तुम्हारे हुंडा सिटी कार के लिए तड़फेंगे नहीं। अरे वो तो वहां चिंतामणि से युक्त रथ विद्यमान है, कल्पना करते ही चलने वाली रथ विद्यमान है, तो पेट्रोल खाकर कार्बन छोड़ने वाली कार के लिए क्या तड़फेंगे वो, उनकी कल्पना अलग है, उनकी अभिलाषा अलग है, हमारी अभिलाषा अलग है, क्योंकि उनकी और हमारी भूमिका ही अलग है। तो सब लोक में रहने वाले, क्योंकि आप हर लोक में हैं, आप हर लोक में, क्यों, क्योंकि आप सर्वव्यापक हैं, सर्वव्यापक होने के कारण हर लोक में हैं, हर लोक में रहने वाले लोकवासी अलग अलग उपाधि के चलते अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन आप एक ही है, इसलिए लोकानाम परम फलदा तम एक, उन लोगों के द्वारा अविलसित जो फल प्रदान करने वाले व्यक्ति आप ही एकमात्र है, एकमात्र आप है, आप सभी के अभिलाषा को पूरा कर सकते हैं। चींटी की अभिलाषा क्या रहती है बोलो, चींटी की अभिलाषा ये रहती है कि थोड़ी सी एक चीनी का दाना मिल जाए, तो एक दाना चीनी मिले तो चींटी को कितने दिन चलेगा गुजारा? एक हफ्ता चलेगा। एक हफ्ते में पूरा करे कि न करे भगवान जाने। एक चींटी एक चीनी के दाने को कितना दिन गुजारा कर सकती है? एक ही दिन खत्म कर जाएगी वो। और तुम्हें एक दिन एक दाने से गुजारा चलेगा? एक किलो से भी गुजारा नहीं चलेगा। हाँ, हमारा आश्रम है देवघाट गलेश्वर आश्रम नेपाल में, अन्न क्षेत्र चलता है। सुबह और शाम दोनों टाइम फ्री भोजन, फ्री चाय है? अब विचार करो, एक महीने में 25 किलो तो चाय पत्ती लगता है, पत्ती 25 किलो चाय पत्ती खर्च होता है। दो टाइम की रोज चाय बनाते हैं सबके लिए फ्री, चाय बनाकर बाहर रख देते हैं, आओ जो भी तीर्थयात्री आओ, जो आओ पियो जाओ। अब चीनी कितना लगता होगा बोलो? एक दाना से चलेगा? चींटी को तो चल जाएगा, हमको चलेगा? महीने में 2 क्विंटल चीनी चला जाए बोलो। 200 आदमी तो रोज खाना खाते हैं, तो तेल कितना लगेगा 200 आदमी के लिए? हैं? 200 250 और कोई पर्व विशेष आ गया, अमावस्या, संक्रांति, पूर्णिमासी, एकादशी है, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, तो और यात्री बहुत आ जाएंगे और सबको व्यवस्था है, तो बोलो कितना खर्च होगा? लोग कहते महाराज आप कैसे चलाते हो, इतना सब खा रहे हैं सुबह शाम, ये आपका आश्रम है, आप कैसे चलाते हो? हमने कहा सर्वव्यापक परमात्मा बंबई में भी रहता है, उसको तो पता है ना कि आश्रम चलाना है, तो बंबई वासियों को भी प्रेरणा देता है अंदर है, वो भी देता है, ये नेपाल से आए स्वामी जी है, थोड़ा बहुत देना चाहिए, कह देता है वो तो लोग लाके देते हैं। उसी चलते वही परमात्मा चला रहा है, हम थोड़ी चला रहे, हमारी क्षमता है। आज के जमाने में एक पेट अपने आप भरना मुश्किल पड़ रहा है, तो इतना 200-250 आदमी को खाना खिलाने की क्षमता हमारे में कहां से आएगी? वो तो वही परमात्मा कर रहा है, सर्वव्यापक है, फलदह, ये सबको अविलसित वस्तु देने वाले। तो एक वहां एक दूसरी समस्या आ गई, पहले अन्न छत्र नहीं खोला था, बेचारे साधु संत वहां रहने वाले, गरीब साधु संत वृत्त असहाय अशक्तों के लिए भोजन व्यवस्था की बहुत कमी थी, तो बहुत तकलीफ था। अब हमने अन्न छत्र खोल दिया वहां, तो जब से अन्न छत्र खोल दिया तो सबके लिए अच्छी व्यवस्था हो गई, घंटी बजती, आते हैं खाते हैं भजन करते हैं गंगा नहाते हैं। लेकिन इतने सबके भोजन बनने के कारण सब भोजन करके बाहर निकलते हैं, तो फिर कुत्ते भी उसी तरह गांव के हो गए, लोकल कुत्ते, इतना कुत्ते आने लगे कि 200 आदमी जो बाहर निकलेगा उनकी थाल में जो जूठन रहेगी तो कम से कम 20-25 कुत्तों के लिए तो ऐसे ही पेट गुजारा हो जाएगा। वो कुत्ते फिर आश्रम छोड़ के जाएंगे नहीं, क्योंकि वही सुबह शाम खाने को मिलता है, जूठन मिल जाता है उनको, फेंके हुए गिरे हुए, उसी से उनका पेट गुजारा था, दूसरे जगह क्यों जाएंगे वो। तो लोग कहने लगे कि आश्रम में अन्न छत्र खोलने से ये कुत्तों ने हैरान किया, अब क्या करोगे महाराज, ये तो होता ही है, होता ही है, अब क्या करोगे, गिरता है तो कहां फेंके उसको, थाल में जूठन रहता है वही खाएंगे, उसी के लिए जी रहे हैं तो अब क्या करोगे। लेकिन संसारी ऐसे हैं कि दूसरे के जूठन खाकर जी रहे हैं उनके प्रति भी नफरत करने वाले हो गए भाई, नफरत हो जाता है, क्योंकि जब वह हमारे प्रतिकूल व्यवहार करने लगते हैं तो फिर हमारी जूठन खाते हैं, और हम जब गहरी निद्रा में सोए हों तो कुत्ते दो लड़ने लग जाते हैं, तो क्या हुआ, हमारे जूठन खाके हमारे लिए विक्षेप करते, संसार तो ऐसे चलता है। तुम एको लोकानां परम फल दो, फल दो प्रकार के, परफल अपर फल, समझे कि नहीं, यूं तो 4 प्रकार के हैं फल है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ, यही तो फल है। लेकिन यहां परम फल दो कोटि में रख दिया, अर्थ और काम उसको अपर फल कहा और धर्म और मोक्ष को पर फल कहा। तो मुमुक्षुओं को ज्ञान की साधना देने वाले आप हैं और उस साधना का फल मोक्ष देने वाले भी आप ही हैं, इसलिए पर फल है। और कोई व्यक्ति यदि अर्थ काम की कामना से यदि आपकी आराधना करता है तो वह कामाशक्तों के लिए, पामरों के लिए, विषयाशक्तों के लिए अपर फल देने वाले भी तो आप ही हैं, क्योंकि फल देने वाले तो आपके अलावा दूसरा तो है ही नहीं ना? फल देने वाला तो तुम ही एक। अब ये अलग चीज है, किसी नाम से कोई पुकार रहा है, किसी नाम से कोई पुकार रहा है, किसी नाम से कोई पुकार रहा है, जो भी संसार में तीनों लोक में जिस नाम से भी पुकार रहा है वो आपके ही नाम है और आप ही उनके अभिलषित वस्तुओं को उनके चाहे अनुसार को फल देने वाले आप ही हैं, इसलिए अपर फल अर्थकाम और पर फल धर्म मोक्ष, ये दोनों प्रकार के फल देने वाले आप ही हैं। बाणासुर को भगवान शिव ने क्या नहीं दिया बोलो? मैंने स्तोत्र सुना है, आप लोगों ने पढ़ते हो रोज ही, क्या नहीं दिया भगवान शिव ने? पुष्पदंताचार्य जी ने क्या सुंदर वर्णन कर दिया है, यद्रिद्धिम सुत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सति अधश्चक्रे बाण। देख लो, यद्रिद्धिम सुत्राम्णः, इंद्र का जो स्वर्ग का साम्राज्य था, इंद्र का जो स्वर्ग का साम्राज्य है वह सामान्यतया हम लोगों के दृष्टि में या सामान्य प्राणियों के दृष्टि में सर्वोच्च समृद्धि है, है? आजकल देश की समृद्धि की चर्चा हो रही है ना, है? कहते हैं कि अमेरिका समृद्ध है, यूरोप समृद्ध है, चाइना समृद्ध है, है? विकसित है, विकासशील है, परिभाषा करते हैं कि नहीं, वो समृद्ध देश। हाँ देख लो, और हमारी भारत की भी समृद्धि तो रोज पेपर में पढ़ने में आ रहा है, भारत भूमि की समृद्धि नहीं, नेताओं की समृद्धि पेपर में पढ़ने में आता है, नेता लोग बहुत समृद्ध है, पता नहीं किस जन्म का प्रारब्ध भोग रहे हो, इस परिभाषा से तो उनको जो समृद्धि देने वाला वो भी शिव ही है वो। हाँ, इंद्र को स्वर्ग का जो साम्राज्य दिया किसने? भगवान शिव ने दिया। और सर्वोच्च समृद्धि यद्रिद्धिम सुत्राम्णो भरद परमोच्च, हे वरद सुत्राम्णो समृद्धि परम उच्च, उससे ऊंचा कोई समृद्धि नहीं। ऐसा होता हुआ भी इंद्र की स्वर्ग की समृद्धि को अधचक्रे बाण, बाणासुर ने तुच्छ बना दिया। बाणासुर की जो समृद्धि थी उसके सामने इंद्र की समृद्धि तुच्छ हो गई। क्यों? इंद्र की समृद्धि केवल स्वर्गलोक की समृद्धि है। अब शिव भक्ति के चलते शिव प्रसन्न होकर बाणासुर को तीनों लोक के साम्राज्य दे दिया तो स्वर्ग की समृद्धि तो बाणासुर की हो गई हो गई, साथ में मृतलोक की समृद्धि, पाताल लोक की समृद्धि, सारे लोक की समृद्धि किसके हो गई? बाणासुर की। इंद्र की मृतलोक की समृद्धि नहीं है लेकिन बाणासुर की मृतलोक का भी समृद्धि उसको प्राप्त हो गया, इसलिए प्लस हो गया ना, स्वर्ग तो उसके हाथ में था ही भगवान की कृपा से, बाकी सभी लोग उसके अधीन में हो गया भगवान शिव की कृपा से, तो इंद्र की समृद्धि तुच्छ हो गया। ये किसने दिया? बाणासुर को शिव ने दिया। ये देखो, तुम्हें को फलदह
तमेको लोकानां परम फलदो दिव्य पदवीं।
उपमन्यु को मोक्ष फल दो दिया, किसने दिया? शिव ने। बाणासुर को काम और अर्थ फल दिया, अपर समृद्धि अपरफल और उपमन्यु को धर्म और मोक्ष फल दिया, पर समृद्धि किसने दिया? दोनों समृद्धि देने वाले एक ही शिव है, तो हम एक शंकराचार्य जी कह रहे हैं तमेको लोकानां परम फल दो दिव्य पदवीं वहन्तस्त्वन्मूलां पुनरपि भजन्ति हरिमुखः। हरि और मुखा, चार मुख वाले कौन? ब्रह्मा और हरि विष्णु। हरि मुखा नारायण आदि सारे देव, विष्णु ब्रह्मा इंद्र कुबेर आदि सब। हरि प्रमुखा, ये भी अर्थ कर सकते प्र उपसर्ग लगाकर, हरि प्रमुखा, भगवान नारायण प्रमुख हैं, ऐसे ब्रह्मा इंद्र कुबेर आदि सब, या हरि प्लस मुखा, हरि मुखा, मुखा मुखधारी चार मुख वाले और हरि एक मुख वाले है ना, तो हरि प्लस मुखा हरि मुखा। पुनरपि, अब आप लोग तो महिमनि स्तोत्र पढ़ते ही हो, एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच में झगड़ा हुआ, शिवपुराण महिमनि स्तोत्र पढ़ रहे हो ना, और झगड़ा का कारण क्या था पता है? है ब्रह्मा और विष्णु के बीच में झगड़ा हुआ, वो झगड़े का कारण क्या था? ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व, कौन बड़ा कौन छोटा और कौन बड़ा। विष्णु कहने लगे कि मैं बड़ा हूं तू छोटा है, मेरे नाभि कमल से कमल निकला, उस कमल का भी मल तू है इसलिए तू छोटा, कमल का कीड़ा। ब्रह्मा क्या हो गए? विष्णु के नाभि से निकलने वाला कमल, उस कमल में रहने वाला कीड़ा, कमल कीड़ा जीव ब्रह्मा। तो विष्णु ने कहा कि तू तो यदि कहा जाए तो मेरा बेटा कमल, कमल का बेटा तू, मैं तू तो मेरा पोता है। विष्णु का पोता हुआ कि नहीं ब्रह्मा? है विष्णु के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, तो विष्णु का पोता हो गया, तू छोटा है। अब ब्रह्मा जी क्या कहने लगे, क्या बात करता है, मेरा आसन कमल और आसन का पुत्र तू, देख आसन मां और तू बेटा, मां बेटे के नाभि का संबंध होता है कि नहीं? देख तू तो अभी अभी पैदा हुआ, अभी तो तेरा नाला छेदन भी नहीं हुआ है, है? मेरे आसन, ब्रह्मा जी क्या कहने लगे, ब्रह्मा का आसन कौन क्या है? कमल, और कमल का नाल किससे जुड़ा हुआ है? और मां के और बच्चे के बीच में नाभि का नाल जुड़ा हुआ तो रहता है कि नहीं? सद्योजात में अभी अभी जो पैदा हुआ बच्चा, उसको तो धाई आके काटती है, फिर गांठ लगाती है, क्या क्या करती है, तब अलग होते हैं, नहीं तो जुड़ा हुआ। अरे तू तो अभी पैदा हुआ, अभी तो धाई आई भी नहीं है, अभी से घमंड करने लग गया तू, अरे बड़ा होगा तो क्या करेगा तू? ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व, क्यों? क्योंकि जो श्रेष्ठ है उसको जो निम्न है छोटा है वह अभिवादन करे, बड़ा व्यक्ति छोटे को अभिवादन न करे, छोटा आशीर्वाद मांगे बड़ा आशीर्वाद दे, आशीर्वाद के लिए अभिवादन करे मांगे, अभिवादन करे तो आशीर्वाद की कामना करते हुए अभिवादन करे, और आशीर्वाद देने वाला स्वस्ति की कामना करते हुए स्वस्ति अस्तु करते हुए तुम्हारा कल्याण हो, तभी अभिवादन करने वाले का कल्याण होगा आशीर्वाद होगा, नियम तो यह है। तो ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व को लेकर झगड़ा शुरू हो गया, तो मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो दोनों के बीच में झगड़ा हो गया।
तो जीवात्मा उधर भीड़ लग गया, कहां? ब्रह्मा जी के घर। क्यों भीड़ लगा भाई? सब लोग शरीर लेने के लिए गए थे, शरीर मिलेगा शरीर मिलेगा, और ब्रह्मा जी उनको जीव को शरीर देना छोड़कर झगड़ा में लग गए, तो बेचारे आंदोलन शुरू कर दिया, हमको जल्दी शरीर दो, जल्दी शरीर दो, झगड़ा बंद करो, जल्दी शरीर दो। और उधर विष्णु के वैकुंठ में झगड़ा शुरू हो गया, क्यों? अरे ब्रह्मा ने हमको जो बना तो दिया, लेकिन पालेगा कौन? हमको दूध दो, हमको पानी दो, हमको भोजन दो, हमको ले जी, पालन करने का काम विष्णु का। उधर विष्णु के यहां भूख से तड़पते हुए जीव मेरा पालन पोषण करो करके झगड़ा कर रहे, इधर ब्रह्मा के यहां प्रारब्ध पूरा होकर शरीर लेने आए हुए जीव शरीर के लिए झगड़ा कर रहे। भगवान शिव ने देखा कि क्या हो रहा है, उधर भी झगड़ा इधर भी झगड़ा, सब जीव करा रहे, ये क्या हुआ? ऐसे देखा तो फिर दोनों, तो पालन करने वाला भी झगड़े में फंस गया और सृष्टि करने वाला भी फंस गया। तब कहा कि क्यों इन दोनों के बीच में क्यों झगड़ा हुआ? बोले मैं बड़ा। इनको ये बात का बोध करा देना चाहिए कि बड़ा कौन है, बस ये बिना मतलब के झगड़ा में फंस गए, बड़ा कोई और है, लेकिन इनको भ्रांति हो गया कि मैं बड़ा हूं। भ्रांति का सिर पूछ नहीं होता है, वो होता है, भ्रांति का कोई सिर पूछ नहीं होता, हो गया भ्रांति। तो उन्होंने दोनों के बीच में अनल स्कंद वपुषा दिव्य अपने ज्योतिर्मय स्वरूप को प्रकट कर दिया, तब दोनों के अस्त्र गायब हो गए, ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र और विष्णु का सुदर्शन चक्र वैष्णव दोनों गायब। तो उन लोगों का आश्चर्य हुआ कि ये क्या है, इसने तो हमारे दोनों अस्त्र गायब कर दिए। तब इनको ये क्या है पता लगाते हैं, तो दोनों के बीच में संधि हो गई, समझौता हो गया, जो पहले पता लगा के आएगा कि इसका आदि कहां अंत कहां है, पहले पता लगा के जो आएगा वो ज्येष्ठ, बाद में पता लगा कर जो आएगा वो कनिष्ठ। तो इस आगे इसका भी उल्लेख करेंगे। तो ब्रह्मा जी तो हंसारूढ़ है, पक्षी में आरूढ़ होकर चले गए ऊपर की तरफ, और विष्णु जी तो बराह तो थे ही, पहले से प्रैक्टिस था पाताल में जाने का, था कि नहीं बोलो? उनको तो प्रैक्टिस था ही, जब पृथ्वी पाताल चला गया, हिरण्याक्ष लेके चला गया, तो पाताल से खोजकर किसने लाया था बोलो? विष्णु ने बराह का रूप धारण किया, और तुरंत बराह का रूप धारण कर विष्णु नीचे चले गए और ब्रह्मा जी हंसारूढ़ होकर ऊपर चले गए। तो दोनों को पता नहीं चला, तो दोनों आ गए। उसके पीछे और कहानियां ये फिर प्रसंग में बता देंगे। तब दोनों ने प्रार्थना की, महाराज हम आपकी अनंत महिमा को नहीं पार पा रहे हैं। तो भगवान शिव ने प्रकट होकर उनके सामने कहा कि देखो घमंड मत करो, ये संसार में कौन बड़ा और कौन छोटा, ये घमंड मत करो, अपना कर्तव्य करो, बस सृष्टि करना तुम्हारा काम सृष्टि करो, पालन करने का काम तुम्हारा है पालन करो, झगड़ा मत करो। यदि तुम कर्तव्य बुद्धि से परमात्मा का स्मरण करते हुए कर्तव्य बुद्धि से करो, तब फिर उसमें होने वाले दोष तुमको स्पर्श नहीं करेगा, नहीं तो शरीर देने में विभेद करने का दोष ब्रह्मा को लगेगा कि नहीं है? लगेगा कि नहीं? तुमको मनुष्य का शरीर दिया, सुअर को सुअर का शरीर दिया, काक को काला शरीर दिया, हंस को गोरा शरीर दिया, ये विभेद करने का दोष लगेगा कि नहीं? और विष्णु को भी दोष लगेगा, पालन करने के बारे में विभेद कर रहे हैं, किसी को बढ़िया फल फेंक रहे हैं, खा नहीं खा पा रहे हैं, और कूड़ेदान में फेंक रहे हैं अन्न, और किसी को एक कण नहीं मिल रहा है, तड़प रहे हैं, पालन करने का काम उसका है, समर्थशाली है, सर्वव्यापक है। क्या सुदूर गांव झारखंड आदि दुर्गम गांव में वो नहीं है क्या? तो है तो फिर उनकी दाल रोटी की व्यवस्था क्यों नहीं करता है? तो उनको सुबह शाम की दाल रोटी के लिए तड़पना पड़ रहा है, और यहां हम लोग फेंके रहे, रोज फेंक रहे हैं। हमको इतना दे रहा है कि हमको फेंकने पर भी खाया नहीं जा रहा है, और उनको दे नहीं रहा है कि एक टुकड़ा भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। पालन करने का विषमता है कि नहीं बोलो? ये दोष नहीं लगेगा उसको? और रुद्र को कोई तो 80 वर्ष 90 वर्ष में भी नहीं मर रहा है, और कोई भरी जवानी में मार दिया, विषमता नहीं है ये? तो परमात्मा को हृदय में धारण करके ब्रह्म का स्मरण करते हुए कर्तव्य कर्म करो तो विषमता का दोष नहीं लगेगा, और अहंकार पूर्वक यदि तुम करोगे तो तुम्हें विषमता का दोष लग जाएगा। तो जाओ ओम नमः शिवाय जप करते रहो और अपना अपना कर्तव्य करते रहो। बोले महाराज हमारा हथियार क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी को दे दिया ब्रह्मास्त्र और विष्णु को दे दिया सुदर्शन चक्र, ले अपना अपना अस्त्र रखो और परमात्मा का स्मरण करो और भजन करो। तो तुम जाओ कहां? वैकुंठ में, और तुम जाओ ब्रह्मलोक में। इसके बाद शिव की कृपा से ही ब्रह्मा को ब्रह्मलोक की प्राप्ति। अरे नाराज नहीं होना हो वैष्णवो, भगवान शिव की कृपा से ही विष्णु को विष्णुलोक की प्राप्ति है। अरे जिस समय हम विष्णु की प्रशंसा करनी होगी उस समय कर देंगे, सुनने आना, फिर हीरो बना देंगे विष्णु को, है चिंता नहीं करना। ये विभेद बुद्धि नहीं रखना है, नहीं तो कहोगे कि महात्मा ने देखो विष्णु को छोटा बना दिया है, शिव जी को बड़ा बना दिया है। तो ऐसा दुराग्रह नहीं रखना। हम नहीं रखते तो तुम क्यों रखते हो? फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने इतने, भगवान शिव ने सब करने के बाद भी आज भी ब्रह्मा और विष्णु नित्य निरंतर वहंतस्तन्मूलाम पुनरपि भजन्ते हरिमुखा। पहले भगवान शिव के भजन किया, उसका फल ब्रह्मा को ब्रह्मलोक की प्राप्ति, विष्णु को वैकुंठ लोक की प्राप्ति है। इसके बावजूद भी विष्णु वैकुंठ में बैठकर नित्य निरंतर भगवान शिव के भजन करते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहकर नित्य निरंतर भगवान शिव के ही भजन करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? योगक्षेम, पहले श्लोक में आ गया ना, अप्राप्त की प्राप्ति योग, प्राप्त की रक्षा क्षेम। और ब्रह्मा जी के को तो डर हो गया, एक सिर तो उसने पहले ही निकाल दिया, कहीं दो तीन जो चार बचे थे वो भी ना उखाड़ दे वे। हे शिवा ये चार तो रहने दो कम से कम, नित्य निरंतर प्रार्थना करते हैं। और विष्णु नित्य निरंतर प्रार्थना करते हैं, एक बार जरा सा घमंड किया था सुदर्शन चक्र गायब हो गया था, कहीं दोबारे फिर गायब न हो जाए, हे शिवा कृपा करना। ये देख लो त्वमेको लोकानां परम फलदो दिव्य पदवीं वहन्तस्त्वन्मूलां पुनरपि भजन्ति हरिमुखा। अब उन लोगों की हालत तो वो है, विष्णु को कहां वैकुंठ दे दिया, ब्रह्मा को कहां ब्रह्मलोक दे दिया, सृष्टि में सर्वोच्च पद दे दिया उनको। देखो है कियदवा दाक्षिण्यम, शंकराचार्य जी कहते हैं शिव जी से, हे शिवा क्या बताऊं, आपके देने की दक्षता, दाक्षिण्यम कुशलता, दूसरों को देने की क्षमता है आप में, कियत क्या नहीं है, है? उसकी क्या मैं वर्णन करूं, कियदवाद अक्षण्यम, दूसरों को देने की जो कला है, कुशलता है, क्षमता है, आप में अपार है। कियत का अर्थ होता है असीम, इयत्ता जहां न हो वहां कियत्ता होता है, समझ गए ना, इयत्ता जहां न हो वहीं कियत्ता होती है। इयत्ता माने इतना, लिमिटेशन, सीमा, इतना। और जहां की इयत्ता नहीं है तो क्या हुआ, कियत्ता, कितना, उसकी सीमा ही नहीं है। आप में देने की क्षमता कितनी है, अनंत है, अपार है। और दूसरी बात, मदासा कियती, और इधर मेरी लेने की क्षमता कितनी है, बोलो, विचार तो करो। चींटी को एक बार चीनी दे दिया जाए तो ढोके जाएगी कि नहीं, ले जाएगी कि नहीं चींटी अपने घर? चींटी को बुलाओ, हे चींटी रानी, तू चीनी के लिए दौड़ती रहती है, तड़पती रहती है, कब तक दौड़ती है, हम एक बार चीनी दे देते हैं, लेके जाओ, खाते रहना, बैठे बैठे दौड़ना नहीं पड़ेगा, तो ले जाएगी कि नहीं? है? देने की क्षमता तुम्हारे में है, एक क्विंटल चीनी देने की क्षमता तुम्हारे में तो है, लेकिन क्या चींटी में एक क्विंटल चीनी ले जाने की क्षमता है? है? इसी तरह शंकराचार्य जी कहते हैं, हे शिवा, आपके देने की क्षमता तो अपार है, लेकिन जितनी देने की क्षमता है क्या उतनी लेने की क्षमता मुझ में है? मेरी औकात तो इतनी लेने की है। आप मुझे ब्रह्मलोक का राजा बना दोगे ब्रह्मा को हटाकर? है, नेता लोग करते हैं कि नहीं? अपने पार्टी के नेता मुख्यमंत्री हुआ तो उसको हटाकर मुझे बनाओ, पार्टी में झगड़ा करते हैं कि नहीं, बोलो? मुझे बनाओ मुख्यमंत्री, उसको हटाओ, चलो बना दो। चलो भगवान शिव ने ब्रह्मा को हटाकर ब्रह्मलोक के अधिपति तुमको बना दिया जाए तो क्या संभाल पाओगे, बोलो? चलो विष्णु का सार्व जगत को पालन करने का वैकुंठ का मालिक भगवान ने शिव ने बना दिया तो सोच समझ कर ही वैकुंठ का मालिक बनाया होगा ना। और तुम कहोगे कि हमको भी वैकुंठ का मालिक बना दे, तो मान लो विष्णु को कहें कि जाओ हरिद्वार भजन करो, इसको वैकुंठ का मालिक बना देते हैं, तो क्या है क्षमता तुम्हारे में? कियतवा, कियतवा दाक्षिण्यम और कियतवा मदासा, कहां तो आपकी देने की क्षमता अपार, कहां मेरे लेने की क्षमता क्षुद्र। अब मैं मांग भी तो क्या रहा हूं आपसे, सुबह शाम की दाल रोटी मिल जाए, बहुत हो गया महाराज। कियद्वा दाक्षिण्यम तव शिव मदासा च कियति, मेरी आशा तो इतनी है, मैं कोई साम्राज्य नहीं मांग रहा हूं, स्वर्ग का साम्राज्य नहीं मांगता हूं, ब्रह्मलोक की साम्राज्य नहीं, वैकुंठ की साम्राज्य नहीं, क्योंकि उसकी कैपेसिटी मेरे में नहीं है, योग्यता नहीं है। फिर तू क्यों यहां रो रहा है, क्यों प्रार्थना कर रहा है, क्यों खड़ा है, फिर तेरी आशा क्या है? तो महाराज मेरी तो यदि इतनी आशा है, कदा वा मद्रक्ष्याम वहसि करुणा पूरित दृशा, करुणा से पूर्ण दृष्टि से देखकर मेरी रक्षा कब करोगे, या मुझे एक बार दर्शन कब दोगे? मेरी तो आशा इतनी ही है, छोटी सी आशा है कि एक बार आपके दर्शन मिल जाए, आपके चरण का दर्शन मिल जाए, चरण कमल का दर्शन मिल जाए, बस मुझे मेरी इतनी आशा है। और वो दर्शन आप कब देंगे, हे भगवान, बस उतना ही हो गया मुझे, मुझे कोई वैकुंठ का साम्राज्य नहीं चाहिए महाराज, मुझे पता है कि आप दे सकते हैं, अपनी क्षमता है। शिव चाहे तो भारत का राष्ट्रपति बना सकते हैं कि नहीं, प्रणब मुखर्जी को हैं? बना ही रहे हैं ना, कौन बना रहा है, इंदिरा नहीं, क्या सोनिया, वही शिव बना रहा है, उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध सब आ गया, भगवान शिव ने बना दिया, कल्पना ही नहीं किया था, बनने जा रहा है। हेलो जी, हाँ, लेकिन मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे में क्षमता नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए, मेरी आशा मेरी इच्छा है ही नहीं। हाँ, तब तुम्हारी क्या इच्छा है? केवल आपके चरण कमल के दर्शन की इच्छा है बस, और वो कब मिलेगा कदा, यही प्रतीक्षा में मैं बैठा हूं। दुरासा भूयिष्ठे दुराधिपगृह द्वारम द्वार घटके दुरंते संसारे दुरित निलये दुख जनके मदायासं किं न व्यपनयसि कस्योपकृतये वदेयं प्रीतिश्चेत् तव शिव कृतार्थ खलु वयम्। हाँ, कस्योपकृतये, कस्य ब्रह्मणः, कस्य ब्रह्मणः, ब्रह्मा जी के प्रति उपकार, क माने ब्रह्मा, हाँ, क का अर्थ ब्रह्म, कस्य, कस्मै देवाय हविषा विधेम, वहां कस्मै शब्द का अर्थ है ब्रह्मणे, ब्रह्मा चतुर्मुख ब्रह्मा के लिए। दुराशा भूयिष्ठे, मेरे हृदय में कहां से ये दुराशा आ गई? दुराशा का अर्थ दुख देने वाली आशा, उसको क्या कहते हैं? हाँ, उसका नाम है दुराशा, जो आशा हृदय में आ जाए और उसके आते ही दुख देना शुरू कर दे वे, उसको क्या कहते हैं? दुराशा। संसार के हर पदार्थ की इच्छा यदि तुम्हारे हृदय, आशा यदि तुम्हारे हृदय में आ गया तो वह दुख देना शुरू कर देगा। दत्तात्रेय के गुरु है, आशा ही परमम दुखम, निराशा परमम सुखम, दत्तात्रेय के गुरु का वाक्य है। कौन गुरु है? कौन गुरु? पिंगला नाम की वेश्या, पिंगला नाम की वेश्या का यह वाक्य है। तीन तीन रात वह बत्ती जला जला कर बैठी है, क्यों? आशा है, कोई ग्राहक आएगा, कोई ग्राहक आएगा और मुझे कुछ पैसा मिलेगा। एक दिन ऐसे रात भर बत्ती जला जला के बैठी, सोई नहीं, उस रात को ग्राहक ही नहीं आया। चलो कल नहीं आया, आज तो आएगा जरूर। फिर श्रृंगार करके बत्ती जलाकर रात भर बैठी, कोई ग्राहक नहीं आया। दो दिन हो गया, एक भी ग्राहक नहीं आया। अब तीसरे दिन फिर श्रृंगार करके बत्ती जलाकर बैठी है, प्रतीक्षा करती है, आज तो जरूर आएगा, आज तो जरूर आना चाहिए, यदि आज नहीं आएगा तो मैं फिर खाऊंगी क्या। देख लो, इसी आशा में वो तीन तीन रात जगी रही। इसको क्या बोलते हैं? दुराशा। आशा दुख देने वाली हो गई, हो गई कि नहीं? ये दुराशा। तब उस सुबह के समय में, ब्रह्म मुहूर्त के समय में, रात भर जगने के बाद, तब उसको दत्तात्रेय जी ये नाटक देख रहे थे दूर बैठे, ये कब तक जगती है देखो तो सही, ग्राहक की प्रतीक्षा में ये कब तक जगती है देखे तो सही। दत्तात्रेय अनुभव लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए जग रहे हैं, और पिंगला ग्राहक की प्रतीक्षा में जग रहे हैं। दोनों के जगने में बड़ा फर्क है। दत्तात्रेय इसकी अवस्था कैसी होती है, ये आशा आशा में कब तक रात भर जगती रहेगी, जरा देखें तो सही। तीसरे दिन जब सुबह हुआ, जोर से कराई, चिल्ला के उसने कहा, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। शायद दत्तात्रेय के जो वाइब्रेशन पहुंच गया होगा ना तीसरे दिन में, है दत्तात्रेय भी वहीं आसपास में थे, कोई हवा का झोंक पहुंच गया होगा उससे दत्तात्रेय को स्पर्श करके उपिंगला के पास, है उतनी से ही उसकी बुद्धि में शुद्धता आ गई और उसको ये विचार आ गया, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। संसार में ये दुख देने वाली यही आशा है और ये आशा को छोड़ दो परम सुख। बत्ती बंद किया, दरवाजा बंद की, सो गई तो क्या आनंद से खर्राटे लेकर सो गई। दत्तात्रेय ने कहा कि संसार में दुख देने वाला कोई और नहीं, हमारी आशा ही हमको दुख देती है। पिंगला से ये ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने, प्रणाम किया, वाह देवी तुमने अच्छा ज्ञान दे दिया आज हमको, हमारी आंख खुल गया है? खुल गई हमारी आंख। दुराशा भूयिष्ठे पृथ्वी में दुराधिपा, और उसके चलते किस किसके दरवाजे में मैं नहीं पहुंचा। दुराधिपा, मेरी आशा दुष्ट है, दुख देने वाली है, और उस आशा की मनोरथ पूरा करने के लिए मैं दुष्ट राजाओं के दरवाजे में भटकता रहता हूं। मुझे भटका रही है कहां? दुराधिपा, आपके चरण में न लाकर उन दुष्ट दुराधिपों के पास मुझे भटका रहे। उस राजा है उसके पास जाएं तो कुछ मिल सकता है, वो सम्राट है उसके पास जाएं कुछ मिल सकता है, वो सम्राट है उसके यहां जाएं तो वो कुछ दे सकता है, वो धनी है उसके पास जाएं तो कुछ दे सकता है, भटका रहा है कहां? गृह द्वारम घटके, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजा, दूसरे दरवाजे से दूसरे दरवाजा, भटका रहा है भाई। किसने भटकाया? दुराशा। किसके यहां भटकाया? दुराधिपों के यहां। और ये उसको ख्याल ही नहीं रहा है कि आप भी उन अधिपों के भी अधिप हैं और आप दुराधिप नहीं है, सुधीप हैं, दुराधिप नहीं है। लेकिन वो आशा आपके चरण में आपके दरवाजे में तो ला नहीं रही है, वो दुष्ट राजाओं के पहुंचा रही है। और वो प्रसन्न होकर दे क्या? पहले प्राप्त नहीं था दुख हुआ, वो दे देते हैं तो फिर उसकी रक्षा में फिर दुरधि, फिर दुख, फिर दुख। दुरंते संसारे, संसार का विशेषण है, केदरी से संसारे दुरंते, ये संसार का कोई अंत नहीं कर सकता है। संसार को तुम नाश नहीं करोगे, वासना को नाश करो तो तुम सुखी हो जाओगे, और सारे संसार को नाश करें तो संभव नहीं होगा। लोग कहते हैं महाराज भजन करने की इच्छा बहुत तीव्र रहती है लेकिन घर में बच्चे हैं कि भजन करने ही नहीं देते। क्या है? बच्चे हैं कि भजन करने नहीं देते। अभी तो एक पोती है 3 साल की, वो तो और हैरान करती है, जैसे मंदिर में गया बत्ती दिया जलाया जप करने बैठे तो आती है, कभी इधर करती है कभी उधर गोद में बैठती है, कभी यूं करती है कभी त्यों करती है, हैरान करती है महाराज पूजा पाठ भजन करने ही नहीं देती, क्या करें महाराज? अभी तो पूजा पाठ थोड़ा कम हो गया है, वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो कर लेंगे कभी। कर लिया तुमने बड़ी होने पर? हमारा पड़ोसी ऐसा है कि हम भजन करने बैठे कि वह हल्ला करने लग जाते हैं, वो भजन करने नहीं देता, वो भजन नहीं करने देता। अपनी कमजोरी दूसरे के मत्थे डालकर तुम जो है बचना चाहते हो। हमारे गुरु महाराज जी ने एक दृष्टांत दिया है, कहते हैं एक कोई राजा था, उसके पास एक बहुत बढ़िया चमकदार घोड़ा था, है? वो बढ़िया घोड़ा था। महाराणा प्रताप के पास, लक्ष्मीबाई के पास है, था ना घोड़ा? क्या घोड़ा, चेतक घोड़ा, ऐसे ऐसे घोड़ा उसके पास रहा होगा। चढ़ने के बाद उस अपनी सवारी के कल्पना मन के इशारे से घोड़ा चलता था, और इस तो राजा एक दिन घोड़े में चढ़ गया तो अपने राज्य के निरीक्षण करने के लिए निकल पड़ा, एक गांव से दूसरा गांव, दूसरे गांव से दूसरे गांव। एक समय की बात है कि बहुत गर्मी पड़ी हुई थी, और कहीं दूर गांव में, एक गांव से दूसरे गांव जाना था तो वो गांव काफी लंबा था, जंगलों के रास्ते से जाना पड़ता, बेड़ों के रास्ते से चल पड़ा। लेकिन गर्मी के चलते घोड़े को प्यास लगी, कहीं पानी नहीं मिल रहा है, इधर देखता है उधर देखता है कहीं पानी नहीं मिल रहा है। उसके पास तो थोड़ी सी पानी उसमें था, वो पीता रहा, लेकिन घोड़े को क्या करेगा, वो थर्मोस वो वाटर बैग में जो पानी है उससे घोड़े का प्यास तो बुझेगा नहीं। देख रहा है कि घोड़ा अब बहुत छटपटा रहा है पानी से, प्यास से, क्या करूं अब। इतने में एक गांव में किसान होता है, वह रेहड़ चला रहा था। रेहड़ बोलते हिंदी में, आप लोग क्या बोलते हो? वो कुएं में चैनल होता है, एक नीचे जाता है तो उल्टा होता है, ऊपर आता है तो पानी भर के आता है, वो गिराता है फिर नीचे जाता है, पानी भर के आता है पानी गिराता है, तो वो पानी खेत की सिंचन करते हैं। और एक बैल जो है वो घूमता रहता है ना, उसको रेहड़ बोलते हैं। तो उसने देखा, अरे पानी है, चलो अब घोड़े को मैं पानी पिलाऊंगा, लेके चला गया रेहड़ के पास। लेकिन वो बैल के चलने से वो जो यंत्र घूम रहा था तो खट्टर 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 आवाज आ रहा था, उस आवाज के चलते घोड़ा पानी के पास पहुंचता ही नहीं था, चमक जाता था, पीछे हट जावे, जोर से चिल्लावे और पीछे हटे। राजा उधर आगे बढ़ाना चाहता है, वो पीछे खिसक जाए, आगे बढ़ाना चाहता है, लाख कोशिश करे घोड़ा उस खट्टर खट्टर आवाज से चमक के आगे बढ़ता ही नहीं था। तब राजा ने कहा, ए किसान, तो ये खट्टर खट्टर बंद कर आवाज, इस आवाज के चलते मेरा घोड़ा चमक गया, डर रहा है और पानी नहीं पी रहा है, बंद कर इसको। बेचारा वो तो किसान था, राजा आज्ञा गया और बैल को पकड़ ली और खड़ा कर दिया, आवाज बंद हो गया। अब राजा ने घोड़े को आगे बढ़ाया तो घोड़ा आगे तो बढ़ तो गया, जब तक वहां पहुंचता है घोड़ा तो पानी नहीं है, रेहड़ चले तो ना पानी आए, पानी खत्म। घोड़ा पहुंच तो गया वहां, क्योंकि आवाज बंद हो गया तो घोड़ा पहुंच गया, पानी बंद हो गया। और राजा ने कहा कि ए किसान, पानी निकाल, घोड़े को पानी पिलाना है। तो किसान ने जैसे बैल को एक मारा और बैल चल पड़ा, खट्टर 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 फिर आवाज हो गया, तो घोड़ा तो चमक के भाग गया वहां से, पानी क्या पिएगा, आवाज होते ही घोड़ा भाग गया। फिर राजा कहता है किसान को, ये तू आवाज बंद कर। बेचारा किसान फिर आवाज बंद करता है, घोड़ा पहुंच गया वहां लेकिन पानी नहीं है, कहता पानी निकाल, बैल को मारा, एक बैल चल पड़ा तो यंत्र चल पड़ा तो आवाज खट्टर खट्टर, घोड़ा भाग गया। अब क्या राजा घोड़े को पानी पिला पाएगा? जैसे राजा घोड़े को पानी नहीं पिला पा रहा है, वैसे तुम भजन नहीं कर पा रहे हो, कहां अपने घर में, क्यों खट्टर खट्टर आवाज आ रहा है तो कैसे तुम भजन करोगे? तुम चाहते हो कि शांति से भजन करें, शांति होने वाली नहीं है तो भजन नहीं हो रहा है। ले जी, जब बच्चे सोते हैं तो तुमको भी सोना पड़ता है, बच्चे जब सोते हैं तो तब तुम खूब बैठकर जप कर लो, और जब बच्चे उठे तो तुम सो जाओ। लेकिन समस्या, बच्चे उठते ही उनको फिर उसका ख्याल कौन रखेगा, तुम सो जाओ तो नियम तो ये होना चाहिए ना, बच्चे सो जाएं तुम भजन करो, बच्चे उठे तो तुम सो जाओ। लेकिन महाराज, बच्चे उठे तो उनको फिर खाना बनाओ, ये करो, स्कूल भेजो, त्यों करो त्यों करो, तब तो फिर जब करने का फुर्सत नहीं। बच्चे आ जाते हैं तो फिर वो हल्ला करते हैं, जब करने का मौका नहीं। बच्चे सोते हैं तो अपने कोई नींद आती है, जब करने का मौका नहीं। शांति मिले तो जब करें, तो तुम्हारी समस्या यही है, घर छोड़ भी नहीं सक रहे हो और जप नहीं हो पा रहा है। तब उस किसान ने कहा, राजन इस घोड़े को तुम पानी नहीं पिला पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने इस घोड़े को एकांत जंगल में शांत में इसको प्रशिक्षण दिया था। अब एक घोड़ा तुम्हारा ये पानी के यंत्र के खट्टर खट्टर से चमक के भागे, वो घोड़ा क्या तुमको युद्ध जिता सकता है? युद्ध भूमि में तो बंदूक भी चलेगा, तोप चलेगा, गोले चलेंगे, डम डम जब गोले चलेंगे, बंदूक चलेगी, तो क्या ये तुम्हारा घोड़ा युद्ध जिता सकता है? अच्छा होता कि किसी शोर शराबे के बीच में घोड़े को प्रशिक्षण देते। समझ लो ये बच्चे तुम्हारे भजन के दुश्मन नहीं है, ये तुमको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हमारे हल्ला करते हुए तुम कितने सफल होते हो। क्या बोलो, ये क्या दे रहे हैं बच्चे? आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, हल्ला के बीच ही तुम भजन करने का अभ्यास करो तो तुम सड़क में भी भजन करोगे, दुकान में भी करोगे, जहां भी करोगे, क्योंकि तुमको अभ्यास होगा ना वहां भजन करने का। किसान ने कह दिया, जाओ इसको मरे मरे जिंदे हो, आगे ख्याल रखना कि दूसरा जो घोड़ा होगा वो हल्ला गुल्ला के बीच में उसको ट्रेनिंग देना, ये रहड़ के खट्टर के बंदूक के गोले से भी न डरे, तब तुम जीत पाओगे। ये तो अभ्यास के पीरियड में तो तुमको बार बार ये करना ही पड़ेगा। शांति हो तब भजन करें, ये तुम भ्रांति में नहीं रहना, अशांति में ही शुरू करो और करते करते अभ्यास ऐसा बनाओ कि अशांति में ही तुम्हारा भजन सहज हो जाए। है दुराशा भो इष्टे दुराधिप मृग गृह द्वार भटके घटके दुरंते संसारे दुरित निलये दुख जनके। संसार का विशेषण है, कैसा है संसार? दुरंते दुरित निलये, दुरित निलय माने पाप का खजाना। संसार को मेरा कहो और तुम पाप से मुक्त हो जाओ, संभव ही नहीं है। संसार के मेरा कहो और तुम पाप से बच जाओ, दुरित निलय, और साथ में दुख जनके संसारे, सुख के लिए तुम जो भी करोगे वो दुख ही पैदा करेगा। संसार में सुख के लिए जो भी करोगे वह तुम्हें दुख ही पैदा करके देगा। दुख देगा कि नहीं बोलो? भ्रांति है, सुख इसके पास है ही नहीं तो कहां से सुख देगा तुमको? किसने कह दिया कि संसार में, संसार के पास सुख है? अनित्यम असुखम लोकम, गीता ने कह दिया है, लोकम संसारम अनित्यम असुखम। और फिर हमारी भ्रांति क्या हो रही है? गीता पढ़ भी रहे हैं कि अनित्यम असुखम, और हमको भ्रांति यथावत है कि ये कभी नाश न हो और ये हमको परम सुख देवे। लेव जी, नाश न हो और आनंद देवे, जबकि नाश होना इसका धर्म, दुख देना इसका धर्म। अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य, कंडीशन रख दिया है, सुख और नित्य की तुमको अभिलाषा है तो तुम भजस्व मां, सुख और नित्य मेरे पास है, दुख और अनित्य संसार के पास है, है? संसार का वजन करोगे, संसार के पास रहोगे, संसार तुमको हमेशा अनित्यता नाशवान और दुख देगा। तुम्हें यदि नित्यता और सुख चाहिए तो भजस्व मां, मेरा भजन करो, तो मेरे पास दोनों चीजें, नित्यता भी है सुखता भी है, इसलिए मैं तुमको नित्य और सुख देना दे सकता हूं। इसलिए कहा दुख जनके मदासाम किम न व्यपन व्यपनयसी कस्य उपकृति। आपने ब्रह्मा का उपकार किया है तो फिर मेरा उपकार क्यों नहीं करते हो? मद आयासम, मेरा परिश्रम, मद आयासम मैंने जो मेहनत किया, मैंने जो परिश्रम किया, किम न व्यपनयसी, मेरे खेद को, मेरे परिश्रम को आप क्या हटा नहीं सकते हो? आप चाहो तो हटा सकते हो। ब्रह्मा की इच्छा पूरा कर सके, विष्णु की इच्छा पूरा कर सके, तो क्या मेरे तो छोटा सी कामना है और वो भी आपको देना नहीं है? मेरे जो परिश्रम है मद आयासम, उसको हटा दो।
वदेयम प्रीतिश्चित तव शिव कृतार्थः खलु वयम्।
इसलिए आपकी कृपा हो तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। आपकी कृपा के बिना जीवन कृतार्थ नहीं हो सकता। कल देखेंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।